वसंत आया। मधुमास की कोकिला रसाल वृक्ष की शाखाओं में फूलों का कमरबंद पहनकर उमंग के साथ उछलने लगी। देवदासी सोने का कमरबंद पहनकर नुपुर की झंकार करती हुई मंद गति से चली जा रही थी। वृक्षों में लगे आम के फलों पर जैसे सोने का रंग चढ़ा था और बिना खाए ही उनके माधुर्य का अनुभव हो रहा था। देवदासी का उरोज मंडल प्रौढ़ तथा कठोर था। उसे देखकर भगवान की अभिलाषा ही मानो उभर आती थी। दिन भर कड़ी धूप रही। देवदासी की आंखों में अभिलाषा लेश से विचलित मंद कटाक्षों की वाहिनी लहर लहर बनकर झूम गई। मधु पीकर भौरों ने सारे वन को अपने उन्मत्त गीतों से गुंजा दिया। भक्ति का मधु पीकर देवदासी ने गोपियों के उन्मत्त गीत अलापे। वृक्षों की शाखाओं पर किसले थिरक उठे। गिरिका का हाथ कपोत आदि मुद्राओं का अभिनय करने लगा। नदियां सूख गईं। गिरिका की कमर की भी बहुत पतली हो गई। नदियों के तटों पर रेत के बड़े बड़े ढेर लग गए। गिरिका के जघन भी बड़े बड़े दिखने लगे। उसके आनंद में ऐसी शोभा झलकने लगी मानो माधव का हृदय कमल अपरिमित आनंद से ओतप्रोत हो उठा हो। गिरिका अभिनय सीख रही थी। स्वामी को सुखकेली के लिए बुलाने का संदर्भ था। बाएं हाथ को कमर पर थामे, दाहिने हाथ की चार उंगलियां पसार कर अंगूठा नाभि स्थान पर रखे, त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी, कंठ को दाईं ओर हिलाती हुई, जब वह अपने विशाल वक्ष पर दृष्टि डाल रही थी तब ऐसा लगा मानो शरतकाल का सूर्य पूर्व और पश्चिम दिशाओं के मध्य भाग में बार बार दृश्य और अदृश्य होते बिंब सा चमक रहा हो। मोतिया के फूल खिले थे और उनकी पंखुड़ियां पीछे की ओर झुककर डंठलों को छू रही थीं। अपने मधुर परिमल की तरंगों से बार बार खींचे आते भवनों को रिझाते हुए मानो सारी सुंदरता को अपने आप में बटोर कर मृदु हिमबिंदुओं से भीगी पंखुड़ियों सहित आगत पति के दर्शन की उत्कंठा एवं सात्विक लज्जा से स्वेद सिक्त होने वाली मुग्धा नायिकाओं अथवा नई दुल्हनों की भांति वे फूल इतराने लगे। वसंत मानो गिरिका से अपना साम्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वेणुगोपाल स्वामी, वृंदावन बिहारी, वंशीनाथ से मधुरित विद्रुम सदृश अधरों वाला मनमोहन, तमाल पल्लव के झुरमुट की दीप्ति झलकाने वाली तनु छाया के साथ क्या हमारे गांव में आया है? हमारी जाति की स्त्रियां तो उसे भूलकर कभी की कुलटा बन गई हैं। स्वामी का हृदय गिरिका पर मुग्ध होने के कारण भारतवर्ष के प्राचीन मंदिरों में अपने निवास का उन्हें स्मरण हो आया है। वैशाख की पूर्णिमा थी। ग्रीष्म की ही भांति वसंत ऋतु में भी सूर्य की कड़ी धूप से जमीन तप जाती है। ग्रीष्म में वर्षा की बौछारें भी होती है। पता नहीं यह ऋतु सांकर्य समय के परिवर्तन का प्रतीक है अथवा ज्योतिषाचार्यों के गणित की त्रुटि का। संध्या समय गिरिका मंदिर की ओर जाने के लिए निकली। रत्नगिरी ने मोतिया के फूलों से सुसज्जित गिरिका की वेणु को गोल चोटी में लपेट दिया। वह लिपटी हुई वेणी ऐसी लगती थी मानो खेचुल के उतरने के बाद भीतर की चमकदार त्वचा सहित सोया हुआ सर्पराज हो। गिरिका अरुंधति के यहाँ गई। अरुंधति ने उसकी चोटी देखकर कहा, क्यों जी, तुम्हारी चोटी बड़ी सुंदर लग रही है। गिरिका बोली, सचमुच सुंदर है क्या? अरुंधति ने कहा, ऐसी लग रही है जैसे कोई काला नाग गोल मोल सिमट कर सोया हो। फिर गिरिका ने पूछा, क्या कालिया नाग जैसी है? अरुंधति ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, तुम विष्णुमूर्ति हो और स्वामी तुम्हारे श्रृंगार रूपी सरोवर में उस कालिया नाग का मर्दन करेंगे। गिरिका बोली, कैसी भाभी हो जी तुम? अरुंधति ने कहा, विष का अर्थ पानी है। गिरिका, हाँ हाँ, हमारे धर्म भैया का हाथ जो तुमने थामा है, सो इतनी पंडिताई तो तुम में होगी ही। अरुंधति, वेणुगोपाल स्वामी तो तुम्हारे भैया से अधिक नटखट हो गए हैं, तुम्हारी प्रौढ़ता मुझ में कहाँ से आएगी। इतने में रथंतरी आई। उसे देखकर अरुंधति ने कहा, बहन तुम्हारी आयु हजार वर्ष की होगी, जरा ननद को तो देखो। रथंतरी, हाँ हाँ देख चुकी हूँ। यह साड़ी तुम्हें कहाँ से मिली है जी? बूंदियों से भरी है, धब्बों वाले सांप सी लगती है। बताओ तुम अब कैसी लग रही हो? कालिया नागन जैसी। उन सर्पिणियों ने पति के लिए स्वामी से प्रार्थना की थी, ठीक उसी तरह तुम भी स्वामी से पति की ही मांग कर रही हो ना। गिरिका, मेरी बात रहने दो, पर तुम दोनों अपनी बातों में श्लेष चमत्कार दिखा रही हो। इसी से कहती हो तुम दोनों दो जीवों वाली सर्प युवतियों सी लग रही हो। अरुंधति और रथंतरी ने एक दूसरे की ओर देखा। रथंतरी बोली, देख लिया ननद को? यह कोई पहले वाली ननद नहीं है, अब प्रौढ़ हो गई है, अत्यंत प्रौढ़। गोपाल देव का एक हाथ एक बार लग जाए तो फिर अपनी लड़की नहीं रहती। गिरिका के मुख पर दैन्य झलकने लगा। रथंतरी ने उसके पास जाकर उसे गले लगाया और बोली, हंसी हंसी में जैसे तुमने कुछ कहा वैसे ही हमने कुछ कहा, बिगड़ती क्यों हो जी? अरुंधति ने कहा, यह बिगड़ना नहीं है, तुमसे अनुनय विनय करवाने का एक ढंग है। गिरिका ने यह बात सुनकर अरुंधति की ओर मिथ्या क्रोध से देखा। अरुंधति कहने लगी, तुम्हारे दृष्टिपात से घबरा जाऊं? क्या मैं कोई पत्थर की मूर्ति हूँ? जाओ जाओ, उस मंदिर में कोई पागल बैठा है, उसे नचाओ। तुम्हारी चितवन से शायद वह चौंक जाएगा। तीनों हंस पड़ी, फिर मंदिर के भीतर गईं। तलैया में पांव धोकर परिक्रमा करके स्वामी के सम्मुख जा पहुंची। गिरिका ने कपोत मुद्रा धारण की और मुखारी राग में नागपत्नी स्तवन वाले तरंग गीत के चरण अलापने लगी। देव कुरुक्षाम देहि पतिभिक्षाम, दीन परिपालनाय स्वकुरु दीक्षाम, जाति कुल शरणम शेष जंतु तरणम, जातम भवताकृत मित्यागमम विदितम। देवदासी ने पंक्तियां गाकर मानो अपने कुल की सारी मलिनता धो डाली। सर्व जंतु समता साधु तव विदिता, सर्व बुद्धिषु प्रहता सा च वेद विहिता देव। इन शब्दों का उच्चारण बड़ी दीन मुद्रा से करके उसने भगवान से नम्र प्रार्थना की। वह स्वयं नीच जाति में जन्मी थी, तथापि भगवान ने जो सर्व प्राणियों में समता दृष्टि रखते हैं उस पर अवश्य अनुग्रह करेंगे, क्योंकि यह अनुग्रह वेद विहित है। देवदासी स्तब्ध खड़ी हो गई। अरुंधति और रथंतरी को साथ साथ मंदिर आए हुए कई दिन हो गए थे। पहले देवदासी मंदिर में न तो गाना गाती थी और न अभिनय ही करती थी। कभी कभी नृत्य के संदर्भ में अरुंधति और रथंतरी ने उसे केवल हस्ताभिनय करते देखा था। गिरिका का आज का अत्यंत मनोहर अभिनय उन्होंने कभी नहीं देखा था। गिरिका ने कपोत मुद्रा में अंगूठे और छिगुने को छोड़कर बाकी तीनों अंगुलियों को एक दूसरे से सटाकर, छिगुनियों को दूर फैलाकर, हाथों को दोने जैसा बनाकर, सटी हुई उंगलियों के मूल में दोनों अंगूठे टिकाकर हाथों को पार्श्व कुंचित कर लिया, जिससे उसका हाथ हल्के गड्ढेदार विकसित अरुण कमल सा दिखने लगा। नीचे को झुकी हुई दोनों छिगुनियां मिलकर ऐसा लगती थी मानो उस पद्म की एक पंखुड़ी नीचे को झुकी हो। हाथों की मनोहारिता वर्णनातीत थी। कोमल पल्लवों के झुरमुट विद्रुम राशि अथवा सोने की कटोरी की भांति वह हाथ जितना देखो उतना ही अधिक सुंदर लगता था। गिरिका के हाथ छोटे थे, उंगलियां लंबी थीं और क्रमशः पतली होती गई थीं। हाथ पहले ही गोरे थे, ऊपर से उसने उन पर कुमकुम का लेप किया था। देवदासी का सारा शरीर जैसे सुगंध द्रव्यों का ढेर था। वह चलती तो मानो कस्तूरी मृग चलता, किंतु उसकी चाल राजहंसी की सी थी। इतने में धर्माराव मंदिर में आ पहुंचा। उसने अरुंधति और अथंतरी को देखकर पूछा, गिरिका क्या कर रही है? अरुंधति ने लगाते हुए कहा, पति प्रसाद मांग रही है। गिरिका अधखुली आंखों से स्वामी की मूर्ति को एकटक देख रही थी। पुजारी ने षटकोप और प्रसाद दिए। पाद टिप्पणी, षटकोप स्वामी के चरण जो भक्तों के मस्तक पर टिकाए जाते हैं। सबके सब मुखमंडप में आ बैठे। थोड़ी देर बैठकर दोनों देवरानियां चली गईं। फिर बहन और भाई तलैया की सीढ़ियों पर जा बैठे। चांदनी निकल आई थी, गर्म हवाएं चलने लगी, मानो दिन भर तपने के बाद भूदेवी अपनी गर्मी को बाहर फेंक रही हो। धर्माराव अपने दुपट्टे को तलैया में भिगोकर निचोड़ रहा था और उसने अपना मुख पोंछ रहा था। देवदासी अपने हाथों को तलैया में धोने लगी। जहाँ उसने हाथ डुबाए वहाँ का पानी लाल हो गया। चांदनी में भी वह लाल पानी हरी नील कांति सा दिखाई पड़ा। धर्माराव ने कहा, गिरिका हम दोनों को एक साथ मंदिर में आए हुए कितने दिन बीत गए? गिरिका कुछ न बोली। धर्माराव ने पूछा, मुझसे रूठ गई हो? गिरिका बोली, मेरी अपेक्षा छोटे जमींदार पर ही तुम्हारा अधिक प्रेम है। मुझे पढ़ाने के लिए समय नहीं मिलता, पर हरप्पा को पढ़ाने के लिए तुम्हें खूब समय मिल जाता है। धर्माराव, भाई मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा भला? अभिनय तो तुम्हें तुम्हारी माँ ही सिखा रही है। जो पढ़ाई सब पढ़ाइयों की पराकाष्ठा है वह तुम्हें जन्म से ही अवगत हो चुकी है। हरप्पा को मैं पढ़ा रहा हूँ वह तुम्हारे लिए ही तो है। गिरिका, मेरे लिए कैसे? धर्माराव, तुम्हारे लिए कहने का तात्पर्य है भगवान के कल्याणोत्सव के लिए। गिरिका लजा गई। धर्माराव ने मन में सोचा, भगवान के कल्याणोत्सव का अर्थ है इस लड़की का कल्याणोत्सव। चंद्रमा आकाश में आगे बढ़ चला, चांदनी और निखर आई। धर्माराव ने पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक आई है? गिरिका, लीला तरंगिणी पूरी तरह सीख चुकी हूँ। गीत गोविंद का अध्ययन कर रही हूँ। अभिनय काफ़ी सीख चुकी हूँ। हस्त मुद्राओं की जानकारी भी हो गई है। नायिका भेद को उनके सात्विक तथा व्यभिचारी भावों समेत समग्र रूप से सीख चुकी हूँ। उन सब का अभिनय कर सकती हूँ। धर्माराव, सभी हस्त मुद्राओं की माँ जैसी कौन मुद्रा है? गिरिका, पताका। धर्माराव, यदि पताका का विन्यास ठीक कर सको तो समझ लो कि अन्य सारी मुद्राएं तुम्हारी मुट्ठी में हैं। बचपन में मेरे पिता कहते थे कि पताका मुद्रा का विन्यास ठीक ठीक जानने वाली कोई नर्तकी आज तक दिखाई नहीं पड़ी है। वे कहते थे कि कोई न कोई दोष उसमें अवश्य हुआ करता है। बात यह है कि पताका मुद्रा के विन्यास के लिए उसके अनुरूप हाथ का होना आवश्यक है। कहते हैं कि ऐसा अनुरूप हाथ केवल पद्मिनी जाति की स्त्री का हुआ करता है। उस जाति की स्त्री के मुद्रा विन्यास में जो सुंदरता होती है किसी अन्य में नहीं होती। मैंने कुचिपुड़ी के कलाकारों से पताका मुद्रा का विन्यास कराया पर वह मुझे पसंद नहीं आया। गिरिका बोली, यह देखो मैं दिखाती हूँ। यह कहकर उसने पताका मुद्रा का विन्यास दिखाया। वह मुद्रा धर्मराव को पंख पसारे हुए किशोर गरुड़ की भांति लगी। वह आश्चर्यचकित हुआ। उसने मन में सोचा, गिरिका शायद पद्मिनी जाति की स्त्री है। फिर उसने कहा, भाई यह विद्या पूर्व जन्म के संस्कार का फल है, सीखने भर से कहाँ आती है। आचार्य विद्या को बुद्धिमानों और मूर्खों में समान रूप से बांट देते हैं, किसी को शक्ति देते नहीं और किसी की शक्ति लेते नहीं। तथापि उनमें से एक पंडित बनता है और दूसरा मूढ़ का मूढ़ ही रह जाता है। धातु को चमकाने पर उसमें प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, मिट्टी के पात्र में वह बात कभी नहीं आ सकती। गिरिका पतली रेखा की तरह लजा गई। धर्माराव ने कहा, तब तो तुम 67 की 67 हस्त मुद्राओं का विन्यास कर सकती हो। गिरिका बोली, भैया ये मुद्राएं विद्या के प्रतीक अवश्य हैं, परंतु इनकी कल्पना क्यों हुई यह मेरी समझ में नहीं आया। इस प्रश्न पर धर्माराव बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्तर दिया, मनोभावों को कई प्रकार प्रकट किया जा सकता है, मुख्य साधन है भाषा। इसी प्रकार मुखावयवों तथा शरीर के विन्यास, कर पदों की हलचल आदि साधनों द्वारा भावाभिव्यक्ति हो सकती है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति में कई दोष होते हैं। बोलते समय दो प्रकार के दोष होते हैं, एक अनौचित्य का, दूसरा अपभ्रंश का। बोली को अपभ्रंश से मुक्त करके परिमार्जित करने वाला व्याकरण शास्त्र है तथा अनौचित्य से मुक्त करके परिमार्जित करने वाला अलंकार शास्त्र है। इसी प्रकार भरत शास्त्र चरण आदि अवयवों के विन्यास को परिमार्जित करता है। मुद्राएं हस्ताभिनय को परिमार्जित करती हैं। इसका अर्थ यह है कि हाथों द्वारा निर्दोष रूप में की जाने वाली भाव अभिव्यक्ति का नाम ही मुद्रा है। गिरिका, सुनती हूँ कि इन हाथों का उपयोग केवल नृत्य में होता है, नाट्य में नहीं होता, क्या यह सच है? धर्मराव, यह सच है कि इनका उपयोग जितना नृत्य में होता है उतना नाट्य में नहीं होता। तथापि इनकी जानकारी के बिना नाट्य में भी समग्रता नहीं आ सकती। कई संदर्भ ऐसे होते हैं जिन्हें अकेला नाट्य छू नहीं पाता। ऐसे संदर्भों में भरत शास्त्र का ज्ञान न हो तो काम नहीं चल सकता। मुद्रा राक्षस में प्रासादारोहणम कृत्वा ये शब्द आते हैं। कहीं कहा जाता है प्रवेशम अभिनीय विक्रमोर्वशीय का एक अंक सारे का सारा भरत शास्त्र पर आधारित है। संस्कृत के सभी नाटकों में कहीं न कहीं भरत शास्त्र का प्रसंग आ ही जाता है। मालविकाग्नि मित्र में तो नाट्य की परीक्षा ही रखी गई है। आज के कलाकार इस परीक्षा में क्या टिकेंगे? ये तो दुष्यंत के सम्मुख पारसी डांस करना जानते हैं, फिर भी हमारा नाट्य से क्या संबंध है? गिरिका, क्यों संबंध क्यों नहीं है? धर्माराव, मैं कह रहा था कि आजकल के नाटकों का नाट्य से क्या संबंध है? गिरिका आकाश की ओर देखने लगी। चंद्रमा मानो सूप से मोती फटक रहा था। हल्की हल्की हवा में पुष्पों का रस झूमता आ रहा था और ऐसा लगता था मानो उन मोतियों पर जमी मलिनता चारों ओर उड़ रही है। बहन और भाई वहां से निकल पड़े। गिरिका को उसके घर छोड़कर धर्माराव लौटने लगा। गिरिका बोली, भैया भीतर नहीं आओगे? धर्माराव ने कहा, भाई मुझमें उतनी शक्ति नहीं है। गिरिका कहने लगी, तुम ही तो विद्यागुरु हो। धर्माराव बोला, श्री शंकर भगवतपाद के गुरु गोविंद भगवतपाद थे, दोनों में कौन महान था? गिरिका बोली, अवश्य गुरु ही महान थे। धर्माराव ने पूछा, लोगों की दृष्टि में कौन महान थे? गिरिका भीतर चली गई। धर्माराव अपने घर लौट आया। बड़ी गर्मी हो रही थी, उसने स्नान करना चाहा। अरुंधति बोली, गीले कपड़े से शरीर पोंछ लीजिए, इस समय स्नान नहीं करना चाहिए। धर्माराव ने शरीर पोंछ लिया। पति पत्नी बाहर खुले में सो गए, सावित्री देवी पीछे के आंगन में सो गईं। धर्माराव ने पूछा, स्नान क्यों नहीं करना चाहिए? अरुंधति ने पूछा, गिरिका के पवित्र शरीर की हवा आप पर चली थी, इसी से मैंने कहा स्नान न कीजिए। धर्माराव ने उसे अपने बाहुपाश में बांध लिया। अरुंधति बोली, आपकी श्रद्धा वेणुगोपाल स्वामी पर अधिक है या नागेश्वर स्वामी पर? धर्माराव बोला, सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी पर अधिक है। अरुंधति ने पूछा, क्या इसीलिए कि उनके 1000 फण हैं? धर्माराव बोला, वे सब फण जाते रहे, अब कुल 2 ही तो बचे हैं। अरुंधति ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? धर्माराव बोला, एक फण तुम हो, दूसरा मैं हूँ। जो फण तुम हो, क्या उसे तुमने कभी देखा है? अरुण कपोल, अरुण अधर, तांबुल से अरुण जिहवा, अकारण क्रोध से अरुण नेत्र कटाक्ष, कुमकुम के तिलक से परिव्याप्त रक्त छाया, आलिंगन मात्र से सारे सुकुमार अवयवों में के दब कर लाल पड़ने के कारण यह शरीर कितना मनोहर लगता है। इस फण को मेरी ओर झुके 7 वर्ष बीत गए, मेरा शरीर पुलकित हुआ, मेरी आत्मा में कामधेनु के दूध की धार बह चली। पता नहीं मेरे भाग्य में यह तुष्टि कितने समय तक बधी है। स्वामी के केवल 2 ही फण बचे हैं, सो भी यदि चिरस्थायी रहे तो मेरे लिए बहुत हैं। रूप से 1000 फण यदि अदृश्य भी हुए हों तो कम से कम अनुसंधान से जाने जा सकते हैं। स्वामी के 4 फण सदैव रहते हैं, पर वे लड़कियों की भांति निश्चल एवं निष्क्रिय हो गए हैं। स्वामी कभी 1 फण से नहीं रहते, मेरा विश्वास इस पर से उठ रहा है। ऐसा लगता है कि अंत में स्वामी केवल 2 फणों के साथ बच जाएंगे। जो फण तुम हो उसकी मनोहारिता कभी कम नहीं होगी। इतने में बाहर चरने वाली गाय की छींक सुन पड़ी। धर्माराव कहने लगा, मैंने सोचा था कम से कम इतना तो बचा रहेगा, पर यह कैसा अपशकुन है, फिर मेरे जीवित रहने का क्या प्रयोजन है। पास के पीपल के वृक्ष पर शकुन पक्षियों के युगल ने कलरव मचाना शुरू किया। धर्माराव कहने लगा, फिर से अशुभ शकुन क्यों, क्या यह फण नष्ट होकर पुनर्जीवन पाएगा, नष्ट होने का क्या अर्थ है। धर्माराव ने अरुंधति की ओर देखा, शायद उसे नींद आ रही थी, उसकी आंखें मूंद गईं। धर्माराव ने उसके गाल छुए, ठंडी हवा चल रही थी, अरुंधति के गाल उसके हाथ को ठंडे लगे। उसने अपने सिर को अरुंधति के वक्ष पर टिका दिया, उसके नग्न वक्ष के स्पर्श से धर्माराव के गाल पुलकित हो उठे। आधी रात बीत गई थी, जिस प्रकार किसी अनमोल रत्न से 10 दिशाओं में कांति फैलती है, उसी प्रकार चंद्रमा से चांदनी फैलने लगी। चांदनी की सुंदर तरंगे ऐसी लगती थी मानो गली कूचों में घुस घुस कर गर्म हवा को ठंडा करके मलय पर्वत से आए हुए समीर कुमार को सफ़ेद और महीन दुपट्टा ओढ़ा रही हों। दूसरे दिन सवेरे धर्माराव सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी के मंदिर में जा पहुंचा। वहां गणाचारी थी, उसने उससे पूछा, कितने बचे हैं। धर्माराव बोला, दिखाई दे रहे हैं ना, केवल 2। गणाचारी ने कहा, उनमें से 1 मलिन हो गया है, उसे फिर से आकृति देनी होगी। धर्माराव ने मन में सोचा, क्या यही है उसका अर्थ। उसके मन में विषाद की एक तरंग उठी और नाभि के पास सुई सी चुभती हुई हृदय तक चली गई। हृदय में समाकर उसे अचेतन कर दिया और अंत में कंठ में जा अटकी। महानुभाव धर्माराव ने उस दुख तरंग को कंठ में उतार लिया, जिस प्रकार शिव ने हलाहल को उतारा था। वह तरंग भी हलाहल की भांति किसी दिशा में निर्गमन न पाकर उसी स्थान पर चक्कर काटती रह गई। गणाचारी ने देखा, बोली, 10 बरस की अवधि है। दोनों ने स्वामी की ओर देखा, जो अनंत है, उसे यह आकृति क्यों धारण करनी चाहिए, इस प्रकार की व्यथा कुटिलताओं को क्यों सहन करना चाहिए। माया भगवान की लीला है, माया से जो लोग आच्छादित हैं उनकी जान पर बन आई है। यह बिल्ली के लिए खेल भले ही हो, पर चूहे के लिए प्राण संकट है। गणाचारी और धर्माराव दोनों रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ दूरी पर हरिया दीख पड़ा, वह जल्दी जल्दी चल दिया। गणाचारी बोली, अब गांव में खुशकी के खेत अधिक नहीं बचे हैं, सारी जमीन में सिंचाई शुरू हो गई है। धर्माराव बोला, पूरब की ओर अब भी थोड़े से खेत हैं। गणाचारी बोली, हरिया उधर से ही तो आ रहा है। दोनों कुछ दूर आगे बढ़े, सामने से देवदासी आ रही थी, उसने गणाचारी को नमस्कार किया। गणाचारी ने आँखें आधी मूंद ली, मुँह को थोड़ा सा कुंचित किया और परिहास तथा आदर की मिलीजुली मुस्कान के साथ सिर हिलाया। देवदासी लजा गई। धर्माराव ने पूछा, कहाँ जा रही हो माई। गिरिका बोली, वहीं। धर्माराव पूछने लगा, धूप हो चली है, भोजन कर आई हो। गणाचारी ने कहा, वहाँ दूध दही तो मिलता होगा। धर्माराव चकित होकर उसे देखने लगा। पहले गणाचारी ब्रह्ममय मूर्ति सी लगती थी, अब वह त्रिगुणात्मक मूर्ति सी लगने लगी। उसकी बाईं आँख कुछ नीली पड़ गई, ऐसा लगा कि तीसरा गुण ही वर्धमान है। उस समय सात्विक मूर्ति में यह विकृति क्यों। धर्माराव ने फिर देखा, गणाचारी का अंतःकरण निर्मल था, राजहंस की भांति प्रकाशमान था। धर्माराव ने सोचा, तब तो आँख की नीलिमा केवल बाहरी चिन्ह है। फिर दोनों आगे चल पड़े, दक्षिण की ओर से हरप्पा सैर करके लौट रहा था। उसकी आयु 16 वर्ष की हो चली थी, गाल उभरे हुए थे, शरीर का रंग पके हुए पीले केवड़े की पंखुड़ी का उपहास कर रहा था। उसकी धोती अभी जरीदार कोर के साथ मखमली चप्पल पर नाच रही थी। हरप्पा ने धर्माराव को देखकर सविनय नमस्कार सूचक सिर और कंधे झुका दिए। धर्माराव ने इधर उधर देखा और कोई वहां नहीं था। उसने कहा, राजा साहब बड़ी देर से निकले हैं। हरप्पा ने गणाचारी की ओर संकेत करके कहा, इनसे मैंने कहीं बातचीत नहीं की, इन्हें मेरा नमस्कार कह दीजिए। गणाचारी ने यह बात सुनी, उसके मुख पर दीनता झलक पड़ी, हृदय में आनंद की रेखा थिरकने लगी। हरप्पा कोठी की ओर चला, वे दोनों फिर आगे बढ़े। इतने में रामेश्वरम दीख पड़ा। जिस प्रकार मारीच राक्षस का समुद्र में पतन होते समय श्री रामचंद्र के धनुष के तनाव से दोनों सिरे एक दूसरे के निकट पहुंच गए थे, उसी प्रकार गणाचार्य की भ्रिकुटी रामेश्वरम को देखते ही एक प्रकार का भयंकर कुटिल तथा विकृत नर्तन करती हुई तन गई। गणाचारी तुरंत एक गली में घुसकर आगे निकल गई। धर्मराव वहीं खड़ा रामेश्वरम की ओर अपलक देख रहा था। रामेश्वरम भी इधर घूर रहा था। अंत में वह एक प्रकार का उदासीन भाव दिखाता हुआ निकल गया। धर्मराव उसकी ओर देखता रहा, जहाँ तक दृष्टि पहुँच पाई देखता रहा। फिर वह सोचने लगा, जहाँ तक वह दिखाई दिया मैं देखता रहा, देखता अवश्य रहा, पर क्या मैं उसे रोक पाया? वह भी मुझे देखकर लापरवाही से चला गया। अब वह कहाँ और मैं कहाँ? गणाचारी स्व जितना दूर है मैं उतना ही समीप हूँ, पर इससे अब क्या लाभ है? गणाचारी की शक्ति अब समाप्त हो गई है। फिर उसे भान हो आया कि वह अकेला धूप में खड़ा है। धूप में मस्तक झुलस रहा था, वसंत काल था, फिर भी ग्रीष्म की सी कड़ी धूप थी। धर्मराव घर लौटा। सावित्री देवी के सिर में दर्द था और वे सो गई थी। अरुंधति ने रसोई बनाई थी। वह सोच रही थी कि पतिदेव सवेरे बाहर गए थे, अभी तक नहीं लौटे। वह स्वयं रसोई बनाकर बैठी थी। पतिदेव कहाँ गए होंगे भला? रंगापुर गए होंगे, पर वहाँ कौन है? शायद उसका बक्सा ले आने के लिए गए हों। उस बक्से में रंगाजम्मा की दी हुई मूल्यवान साड़ी है। उसे पहनने पर अरुंधति के मन में कितनी उत्कट इच्छा है, वैसे साड़ी फिर कहाँ मिलेगी? अब तो घर में सभी लोग खादी पहन रहे हैं। उत्पाड़ा की साड़ी अब उसके अनुरोध पर भी धर्मराव नहीं खरीदेगा। पाद टिप्पणी में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का एक गाँव जहाँ बढ़िया साड़ियाँ बनती हैं, यह है उत्पाड़ा। उस विदेशी साड़ी पर क्यों उसका इतना मन था? नहीं नहीं, वह विदेशी साड़ी नहीं है। रंगाजम्मा की दी हुई साड़ी विदेशी नहीं हो सकती। वह साड़ी इतने वर्षों से उस बक्से में रखी थी, क्या उसे अब तक दीमक नहीं लगी होगी? क्या वह कभी भी फट न गई होगी? उफ, कैसे माता पिता हैं। उसकी आयु अब 23 वर्ष की हो गई है। अजीब बात यह थी कि केवल 2 कोस पर रहते हुए भी दोनों परिवारों का एक दूसरे से मिलना जुलना बंद था। अरुंधति और धर्मराव में अव्याज अनुराग उत्पन्न करने में एक तो राज्यलक्ष्मी का और दूसरे रंगाजम्मा की दी हुई साड़ी का हाथ था। राज्यलक्ष्मी बीमार पड़ी और वह साड़ी दीमक लगकर फट गई होगी। अरुंधति सोच रही थी, हमारा प्रेम कितने समय तक टिक सकेगा? राज्यलक्ष्मी शायद मर जाएगी। उसके मरने के बाद भी क्या हमारा प्रेम टिकेगा? क्यों नहीं टिकेगा? क्या वह मायके जाएगी? यह सोचकर उसे हंसी आ गई। उसी समय धर्माराव वहां आ धमका। उसने कहा, अयंधी, यहां कोई बेर का पेड़ नहीं है, क्यों हंसती हो? पाद टिप्पणी में किसी के अकारण हंस पड़ने पर तेलुगु में कहते हैं, बेर के पेड़ के नीचे बैठी अंधी की तरह क्यों हंस रही हो? अरुंधति बोली, क्यों नहीं है, आप जो हैं। धर्मराव बोला, तुम आप ही आप हंस रही हो, तब तो मेरे बिना तुम्हारा जी बहल जाता है। फिर मुझे 8 पहर क्यों घर में बांधे रखना चाहती हो? अरुंधति ने पूछा, रंगापुर जाकर मेरा बक्सा कब लाएंगे? धर्मराव, यह कौन सी नई बात शुरू कर दी तुमने? अरुंधति, चलिए हम दोनों मिलकर वहाँ चलें। धर्मराव, वाह वाह, बड़ी अच्छी बात कही तुमने। मैं तो अपनी पत्नी को चोरी से यहाँ लाया था, अब मैं तुम्हें साथ लेकर वहाँ जाऊँगा तो शायद वे लोग मुझ पर मुकदमा चलाएंगे कि माल समेत चोर पकड़ा गया है, तब मैं क्या करूँगा? अरुंधति हंसी की बात नहीं, 3 बरस से राजलक्ष्मी को देख आना चाहती हूँ, पर समय यूँ ही बीता जा रहा है। धर्मराव, वहाँ एक खबर है, राज्यलक्ष्मी के घर में जोशी नाम का एक स्कूल मास्टर रहता था। तुम रामेश्वरम को तो जानती हो न? अरुंधति, वह शिशुपाल न? धर्मराव, हाँ वही, वह तालुका बोर्ड का प्रेसिडेंट है। सुनते हैं कि जोशी मास्टर की पत्नी और प्रेसिडेंट साहब में अनुचित संबंध था। जोशी का यहाँ तबादला करके शिशुपाल अपना काम निकाल रहा था। इसका बेचारे जोशी को पता चल गया, वह बड़ा दुखी हुआ, परंतु रामेश्वरम का वह क्या बिगाड़ लेता। उसने अंत में पत्नी को मायके भेज दिया। 10 दिन में छुट्टियाँ समाप्त हो जाएंगी और जोशी लौट आएगा। रामेश्वरम जोशी की ससुराल भी जा पहुँचा। उसने जोशी पर कई उपकार किए थे, इसलिए जोशी की ससुराल वालों ने उसकी बड़ी आवभगत की। सच्ची बात उन्हें ज्ञात न थी। इसी रामेश्वरम ने उनसे कहा कि शायद किसी बात पर बिगड़कर जोशी ने अपनी पत्नी को यहाँ भेज दिया है। छुट्टियों में के बाद आप लोग लड़की को सुवर्णापेट वापस लाकर जोशी के यहाँ छोड़ दें, आगे मैं देख लूँगा। पता नहीं इस रामेश्वरम की दुर्जनता का अंत कब होगा। अरुंधति, हाय, यहाँ आने के बाद उनकी गृहस्थी में न जाने कितनी गड़बड़ मचेगी। आप वहाँ जाकर उसके मायके वालों को समझाते क्यों नहीं कि लड़की को यहाँ न भेजें। धर्मराव, वाह क्या सलाह है तुम्हारी। तुम समझती हो कि मेरे पास यही एक काम है। अरुंधति, आप क्या इतने निर्दयी हैं। धर्मराव, दया अथवा निर्दयता किसके लिए है। उसके लिए जो दुख और सुख में भेदभाव रखता हो। मेरे लिए निर्दयता क्या है। अरुंधति, जैसे आपको सुख की कोई आवश्यकता ही नहीं। धर्मराव, यही नहीं कि मुझे सुख की आवश्यकता नहीं, बात यह है कि सुख के अंतर्वर्ती भाव में मेरी निष्ठा नहीं। धर्मराव स्नान करके भोजन कर रहा था। अरुंधति ने फिर से अपने बक्से की बात चलाई। धर्मराव बोला, तुम जब कभी यह बात छेड़ती हो मेरा जी ऊब जाता है। उस बक्से में वज्र है कि वैदुर्य क्या है भला। यदि लगातार एक बरस तक बक्से की बात न करोगी तब मैं बक्सा ला दूंगा। अरुंधति बोली, मैं तो आठों पहर बक्से की ही बात किया करूंगी। धर्माराव, तो तुम्हारी आयु 1000 बरस की होगी। अरुंधति, यह कैसा हिसाब है। धर्माराव, तुम बक्सा मांगती रहोगी मैं नहीं लाऊंगा। तब तो कोई बरस पूरा नहीं होगा। जब कोई बरस पूरा ना होगा तो हम कैसे मरेंगे। इस तरह तुम अमर बन जाओगी। अरुंधति, बच्चों को क्या आप यही पढ़ाते हैं। तब तो आपके विद्यार्थी तर्कशास्त्र सीख चुके और लाभ पा चुके। दिन ढल रहा था, देवदासी आई। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा थी। देवदासी ने काली किनारी वाली सफेद खादी की साड़ी पहन रखी थी। अरुंधति ने पूछा, यह साड़ी तुम्हारे वृंदावन में बुनी गई है क्या। हाँ, वहां चरखे बंद नहीं हो गए हैं। गिरिका, कृष्ण को। अरुंधति, अरे उस नाम से ही क्यों इतना लजा जाती हो। गिरिका, इसमें लजा जाने की कौन बात है, भगवान का नाम तो कोई भी ले सकता है। अरुंधति, बड़ी चतुर हो। गिरिका, उनके जन्म के 12 वर्ष बाद कहीं जाकर माता पिता के कष्टों का अंत हुआ, पर वृंदावन में उनके जन्मदिन से ही सारे संकट तिरोहित हो गए। अरुंधति, देवकी की अपेक्षा गोपियों ने ही अधिक पुण्य किया था। सावित्री देवी से बातें ये बातें सुन रही थी, बोली, देवकी ने पुण्य किया था, उनसे अधिक यशोदा ने किया था। देवकी को केवल जन्म देने की यातना ज्ञात थी, परंतु यशोदा दूध पिलाने का सुख जानती थी। धर्मराव ने अरुंधति से कहा, यह तो बताओ, गिरिका के साथ मंदिर तुम जाओगी या मैं। अरुंधति, मुझे देखकर स्वामी लजा जाते हैं, और गिरिका से ठीक ठीक बोलते तक नहीं। बहन के समक्ष कोई भी अपनी पत्नी से आत्मीयता का व्यवहार नहीं करता। धर्माराव, मुझे देखकर उन्हें लाज नहीं आएगी। धर्माराव, अरुंधति, सो तो आप जाने। गिरिका और धर्माराव मंदिर की ओर चले। धर्माराव के घर से मंदिर तक कोठी की सड़क के अतिरिक्त एक और रास्ता भी था, परंतु धर्माराव कोठी की सड़क से ही चलने लगा। गिरिका मानो अपने ही भीतर बैठ गई। केवल उसके पांव चल रहे थे। वह सोच रही थी, पता नहीं स्वामी का कल्याणोत्सव कब होगा, तब तक क्या मुझे इसी तरह कुंवारी रहना होगा। रंगा राव जी तो स्वामी के कल्याण का समारोह नहीं मनाएंगे, वे हमारे धर्म में ही नहीं रहे। कब होगा प्रभु जी का कल्याण, उस समय मैं कैसी रहूंगी। मैं राधा हूँ, गोपी हूँ, रुक्मिणी हूँ, सत्यभामा हूँ। स्वामी का विवाह हो जाए तो मैं उनकी सब कुछ बनूंगी, उनके चरणों की रज बनूंगी। संभवतः स्वामी की उंगलियाँ बांसुरी को ढो ढोकर थक गई हैं, मैं बांसुरी लेकर उन उंगलियों को विश्रांति दूंगी। विवाह के समय स्वामी मंदिर से निकलकर कल्याण मंडप में आएंगे, तब क्या अरुण कमल जैसे उनके चरण काले नहीं पड़ जाएंगे। लाली के कारण चरणों पर कालिमा नहीं दिखेगी, तब क्या करना होगा, कैसे पहचानूंगी। गिरिका वहीं खड़ी हो गई। धर्माराव ने पीछे मुड़कर देखा तो वह कुछ दूर खड़ी थी। वह उसके पास जाकर कहने लगा, पहचानने का उपाय मैं तुम्हें बताऊं, चलो। गिरिका विस्मित होकर देखने लगी, फिर दोनों आगे बढ़े। गिरिका फिर सोचने लगी, एक उपाय है, मैं सफ़ेद और महीन साड़ी पहनकर जाऊंगी। जहाँ जहाँ स्वामी के पदचिन्ह अंकित होंगे वहाँ मैं अपना आंचल बिछाऊंगी। उस महीन और सफ़ेद साड़ी पर स्वामी के चरणों की छटा फैलेगी। उस छटा के घनेपन या पतलेपन से पता चलेगा कि प्रभु के चरण काले पड़ गए हैं या नहीं। जहाँ जहाँ प्रभु के चरण पड़ेंगे वहाँ वहाँ भी की भूमि पुण्यवती होगी। मुझ अभागिन के हाथ में वहाँ भी वहां रहे तो कितना अच्छा हो। स्वामी के हाथों को अपने हाथ में लूंगी और उन्हें कल्याण मंडप में ले जाकर बिठाऊंगी। लज्जावश अपने आप में सिकुड़ जाऊंगी, स्वामी के मुख की ओर नहीं देख पाऊंगी। तब मेरे हाथ स्वामी के चरणों का स्पर्श करेंगे तो क्या उनके कपोल पुलकित होंगे, क्या उनके नेत्रों से प्रेमामृत की वर्षा होगी। यह निगोड़ी लाज मुझे शायद कुछ नहीं देखने देगी। मंदहास करते हुए स्वामी के सुंदर मुखकमल को जी भर कर देख लेने का आनंद संभवतः मेरे भाग्य में बदा ही नहीं है। मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैं कहाँ पली और आज कहाँ की इच्छा ले बैठी हूँ। मेरा जन्म कलुषित है, स्वामी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मेरी माँ ने एक पवित्र विद्या सीखी थी, उसने अपनी जाति के अनुरूप काम किया। उस काम में भी उसने अत्यंत सम्मानपूर्ण व्यवहार किया। मेरे पिता विद्वान थे, वेद वेदांगों में पारंगत थे। सुवन्ना पेठ में उनका जितना सम्मान होता था उतना फिर किसी और व्यक्ति को नहीं हो सकेगा। मेरा जन्म कहाँ इतना बुरा है जो स्वामी मुझे अस्वीकार करें। मेरे पिता सत्राजित से गए गुजरे तो नहीं थे? सत्राजित के मन में स्वामी के प्रति अविश्वास अवश्य रहता था। मेरे भाई रुक्मी से तो बुरे नहीं हैं? रुक्मी नास्तिक था, शिशुपाल का मित्र था, परंतु मेरे भैया और शिशुपाल का क्या संबंध है? शिशुपाल शिशुपाल है, बिजली गिरने से भी मरा नहीं। फिर भी स्वामी सत्वगुण राशि हैं और मैं तमोगुण राशि हूँ, मैं उनके किस काम आ सकूँगी? मेरा मन तमोगुण से दूषित है, इसी से प्रभु के पास पहुँच नहीं पाता। अब मैं क्या करूँ? गिरिका की आंखों से आंसू बहा निकले। दोनों मंदिर को जाने वाली सड़क के मोड़ तक पहुँचे। वहाँ से थोड़ी दूर पर कोठी का दरवाज़ा था। धर्माराव वहीं खड़ा हो गया, गिरिका भी खड़ी हो गई। दोनों लगभग 5 मिनट वहीं खड़े रहे। धर्माराव किसकी राह देख रहा था? सुवन्नापेठ में शहर के कई लक्षण आ चुके थे, तथापि वहाँ की पुरानी दंतकथाओं की जानकारी समय समय पर लोगों को मिलती रहती थी। वहाँ के पादरियों को भी मंदिर, कोठी, गणाचारी आदि सभी के विषय में ज्ञात था। वे लोग इन बातों पर विश्वास करते थे या नहीं, यह एक अलग प्रश्न था। साधारणतया देवदासी और धर्मराव का नाता सभी को ज्ञात था। देवदासी का वृत्तांत सभी जानते थे। जब वह रास्ते से गुजरती तो उसकी ओर कोई सिर उठाकर न देखता। उस शहर में केवल दो व्यक्तियों की कभी आलोचना नहीं होती थी, एक थी देवदासी और दूसरी गणाचारी। नए कर्मचारी आते, कॉलेज में नए नए विद्यार्थी आते, यदि उनमें से कोई देवदासी के बारे में कोई टेढ़ी बात कहता तो तुरंत पुराने लोग उसकी सच्ची कथा सुनाते और ऐसी बातों की रोकथाम करते। इस पर कुछ लोग कहते, जाओ जाओ ये सब कहानियाँ किसी बुढ़िया को जाकर सुनाना, इस जमाने में इन पर कौन विश्वास करेगा। कुछ लोग कहते, ऐसी बातों का होना असंभव है। लेकिन ये थोड़े से लोग कुछ भी कहें, देवदासी के प्रति अधिकतर लोगों के मन में बड़ा आदर था। देवदासी और धर्माराव जब बाजार में खड़े हुए तो लोग दूर दूर जाने लगे। कुछ लोग उनकी ओर घूरते जा रहे थे। उत्तम जाति से के सुसज्जित अश्व की भांति गिरिका एक जगह टिक न पाती थी। उसके पांव मंदिर की ओर बढ़ना चाहते थे। थोड़ी देर में हरप्पा कोठी के द्वार से आता दिखाई पड़ा। द्वार वहां से लगभग 100 गज दूर था। हरप्पा पोंदूर के महीन कपड़े पहनता था। पाद टिप्पणी में, पोंदूर आंध्र के श्रीकाकुलम जिले का एक गांव जहाँ की महीन खादी देश भर में प्रसिद्ध है। वे इतने महीन होते थे कि स्वदेशी हैं या विदेशी यह बताना कठिन है। रंगा राव और नागेश्वर राव उन्हें विदेशी वस्त्र समझते थे। हरप्पा नंगे सिर कहीं बाहर न आता। जरी की कोर वाले उत्तरीय के अतिरिक्त किसी और वस्त्र से पगड़ी न बांधता, धोती ही पहनता। कुर्ता किसी भी रंग का क्यों न हो, गले में रत्नहार अवश्य रखता। धर्माराव की दृष्टि में हरप्पा बाल सूर्य सा था। धर्माराव के पिता स्वर्गीय जमींदार के समवयस्क थे। स्वर्गीय जमींदार को धर्माराव एक वृद्ध के नाते जानता था। हरप्पा को वह अपनी अपेक्षा छोटे बालक के नाते जानता था। धर्माराव के समवयस्क कोई जमींदार न थे। वह नहीं जानता था कि उसके जमींदार बालक हैं या वृद्ध। हरप्पा उसके पास आया तो देवदासी आंखें मूंद कर खड़ी थी। हरप्पा 16 वर्ष का था। इस आयु में उसके मुख पर सयानेपन के लक्षण दिख पड़ते थे। वह सदैव पैदल चलता, घोड़े की सवारी कभी न करता। मोटर गाड़ी उसे कतई पसंद न थी। मोटर की सवारी से उसे चक्कर आने लगता। एक बार उलटी भी हुई थी। उसने एक बार मोटर कार को देख कर धर्माराव से कहा था, यह कैसा जानवर है, इसका सिर नहीं, पूँछ नहीं, यदि हाथी कहो तो हमें उसके पेट में बैठना पड़ता है। हाथी की पीठ पर बैठते हैं, हाथी के चीख से या तो भय लगता है या फिर श्रवण सुख मिलता है, पर इस जानवर की चीख बड़ी कर्कश लगती है। हरप्पा ने धर्माराव से धीरे से पूछा, क्या यही है देवदासी? मैंने इन्हें कुछ दिन पहले स्वामी के मंदिर में देखा था, इन्होंने भी मुझे देखा था, मैं इन्हें नमस्कार करूं? धर्माराव बोला, यह बाजार है, कोई देख लेगा, आप ऐसा न करें। धर्माराव ने पूछा, जब कोई न हो तब नमस्कार कर सकता हूं? धर्माराव, आप जमींदार हैं, आप किसी को नमस्कार न करें, सभी लोग आपको नमस्कार करेंगे। हरप्पा ने पूछा, मैं आपको तो प्रतिदिन नमस्कार कर रहा हूँ। धर्माराव ने हंसकर कहा, मैं नमस्कार करता हूँ और आप यह समझते हैं कि आप कर रहे हैं। हरप्पा ने फिर कहा, मैं देवदासी को नमस्कार करूँगा। धर्माराव बोला, सच कहता हूँ अब नहीं। हरप्पा ने पूछा, मैं उनसे बोल सकता हूँ? धर्माराव ने जवाब दिया, अब वह कुछ सोच रही है, आप बोलेंगे भी तो वह जवाब नहीं देगी। हरप्पा ने कहा, नहीं बोलूँगा तो आज मुझे नींद नहीं आएगी। धर्माराव, अपनी माता जी के समान देवदासी को भी समझ लीजिए। हरप्पा हैरान होकर पूछने लगा, तब आप कौन हैं? देवदासी और हरप्पा ने एक दूसरे की ओर देखा। अवस्था में देवदासी बड़ी थी, हरप्पा छोटा था। हरप्पा ब्रह्मचारी था, अविवाहित था। उसमें स्त्री पुरुष का ज्ञान अभी विकसित नहीं हुआ था, वह निरा अनजान था। देवदासी को देखकर उसके मन में एक विचित्र कल्पना आई। उसको लगा कि देवदासी उसको बेटी सी दिख रही है। देवदासी को हरप्पा की दृष्टि में प्रसन्नता और आदर भाव के दर्शन हुए। न जाने उसने क्या सोचा, पर उसके मुख पर भी आनंद और मंदहास की छटा झलक पड़ी। फिर धर्माराव आगे चलने लगा, उसके पीछे देवदासी और सबके पीछे हरप्पा। देवदासी उस नववधू की भांति आनंद विभोर हो रही थी, जिसे उसके भाई और पिता दोनों ससुराल ले जा रहे हों। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर हरप्पा रुक गया। देवदासी और धर्मराव ने मुड़कर उसकी ओर देखा और भीतर चले गए। हरप्पा क्षण भर वहीं ठहरा रहा, फिर लौट आया। लौटते समय रास्ते में सब लोगों ने उसकी ओर देखा, पर वह स्वयं अपनी दृष्टि जमीन पर गड़ाया था, मानो उसकी आंखें मुड़ मुड़ कर मंदिर के भीतर देख रही हों। हरप्पा धीरे धीरे कोठी के भीतर चला गया। उसने अपने कमरे के सामने लगी मोतिया की बेल देखी। अंधेरे को बढ़ता देखकर उसने सोचा सांझ हो गई है। फिर वह गजशाला में जा पहुंचा। वहां एक हाथी था। इतने में नौकर रंगन्ना कहने लगा, सरकार इसी हाथी का नाम हनुमान है। हमारी कोठी में पिछले दिनों लक्ष्मण स्वामी नामक एक हाथी था, ठीक आपके पिताजी के राज तिलक के दिनों चल बसा। उस पर आपके दादा सवारी किया करते थे। हरप्पा किसी ही बात का कोई जवाब न देता, फिर भी रंगन्ना को उसके सारे मनोभावों का पता चल जाता था। रंगन्ना आगे कहने लगा, मैं लक्ष्मण स्वामी को खूब जानता हूँ। उसकी इच्छा थी कि राजतिलक के दिन बड़े सरकार उस पर सवार होकर जुलूस में निकलें। वह बेचारा बूढ़ा हो गया था और उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी थी, इसी से बड़े सरकार ने जुलूस बंद करवा दिया। इस पर लक्ष्मण स्वामी ने दुखी होकर अपने प्राण त्याग दिए। हरप्पा ने उसकी ओर देखा। रंगन्ना बोला, हाँ सरकार, लक्ष्मण स्वामी गांधी जैसा था। तब से बड़े सरकार कभी हाथी या घोड़े पर सवार न होते, मोटर गाड़ी में बैठते हैं। हरप्पा वहां से चला जा रहा था। नौकर साथ साथ चल रहा था। एक जगह पुरानी दीवार ढह गई थी और पत्थरों का ढेर लग गया था। उसके पीछे कोठी की दीवार मजबूत थी। इन दोनों दीवारों के बीच एक विशाल मैदान दक्षिण से उत्तर तक फैला हुआ था, जिसकी लंबाई आधे मील से कम नहीं होगी। इस मैदान में पुराने वक्तों के राजकुमार घोड़े की सवारी, हाथियों को चलाना, शारीरिक व्यायाम तथा तलवार के कर्तव्य आदि सिखा रहे थे। अब उस मैदान में कई विषैले नाग निवास कर रहे थे। हरप्पा ने मैदान की ओर देखा। रंगन्ना बोला, सरकार, अब हम वहां नहीं जा सकेंगे। उस मैदान में हजारों सांप हैं। हरप्पा वहां से लौटा और अपने कमरे में पहुंचा। वहां भोजन तैयार था। हरप्पा मांसाहारी नहीं था, केवल साग भाजी खाता था। एकादशी को प्याज भी नहीं खाता था। उस दिन वह एक वक्त उपवास भी करता था। इसका कारण न तो कोई उससे पूछता और न ही वह किसी को बताता। धर्माराव ने एक बार उससे कहा था कि बड़ी रानी एकादशी को उपवास किया करती थी। हरप्पा के मन में दादी और माँ में कोई भेदभाव न था। यदि दादी उपवास करती थी तो माँ भी अवश्य करती होंगी। इसी से उसने भी उपवास शुरू कर दिया था। भोजन के बाद वह थोड़ी देर तक वहां टहलता, फिर दिए के पास बैठकर पढ़ता। भागवत, महाभारत, कृष्ण करणामृत, आंध्र नायक शतक और कुछ अंग्रेजी के उपन्यास वह पढ़ा करता था। उसने कई बार धर्माराव से संस्कृत पढ़ाने का अनुरोध किया था। धर्माराव ने पढ़ाना शुरू भी किया था। लगभग डेढ़ पहर रात बीतने तक वह पढ़ता रहा, फिर लेट जाता, पर उसे नींद ना आती। फिर वह सोचने लगता, न जाने मेरी माँ कैसी थी। बचपन में मैंने उसे देखा था, पर अब कुछ याद नहीं। संभवतः वह शची देवी सी थी। मुझ पर उसका असीम प्रेम था। कहते हैं कि मरते समय उसने मुझे बुलाकर मेरे सिर पर जरी की सफ़ेद पगड़ी बांधी थी। मैंने अब तक वैसी ही पगड़ी पहन रहा हूँ। दादी और माँ दोनों एक साथ क्यों मरी होगी भला। कोठी के पीछे का मैदान फिर से साफ कराऊँगा। घुड़सवारी, हाथी चलाना, तलवार लाठी चलाना आदि सीखूंगा, नहीं तो राजा अपने शत्रु से लोहा कैसे लेगा। मेरी माँ बड़ी पतिव्रता थी। ऐसी पत्नी के मरते ही पता नहीं पिताजी ने दोबारा विवाह क्यों किया, और विवाह भी कहाँ किया, किसी को लाकर रख लिया, यह विवाह कैसे हो सकता है। इतने में हवा का एक झोंका आया और पास वाले सुपारी के पेड़ को सिहरा गया। हरप्पा सोचने लगा, कोठी में सारे वृक्ष जहाँ तहाँ टूट गए हैं। सुनता हूँ कि पहले कोठी नंदनवन सी लगती थी। मैं बड़ा होकर फिर से इसे नंदनवन बनाऊंगा। पुन्नाग के पत्तों के बीच में घुसकर हवा बड़ी मृदुता से चलती है। सुपारी के पेड़ों के बीच से बहते हुए मरमर ध्वनि करती है। फल के वृक्षों पर दौड़ लगाती है। केले के पत्तों पर दौड़ती हुई उन्हें फाड़ देती है। मोतिया के मड़वे पर से मेरे कमरे में आती है। मेरे ओढ़े हुए महीन दुपट्टे के भीतर घुसने का प्रयत्न करती है। मैं उसे घुसने नहीं देता। वह इधर उधर छटपटाती है, फिर मेरा दुपट्टा हटा देती है। तब हम दोनों हंस पड़ते हैं और मित्रों की तरह गले मिलते हैं। जब मेरी माँ कोठी में टहलती थी तब ऐसा लगता था जैसे लक्ष्मी वैकुंठ में टहल रही है। वह अपने गले में प्रायः कई रत्नहार और माणिक्य आदि पहना करती थी। सफ़ेद रेशम की साड़ी पहनकर कुमकुम का तिलक लगाए सुगंध द्रव्यों से सुवासित वह कैसी दिखती होगी, अवश्य ही जगन मोहिनी के अवतार सी लगती होगी। वह महापतिव्रता समस्त पुण्य क्षेत्रों की भांति पवित्र होगी। विशाला कल्याणी स्फुट रुचि योध्या कुलय कृपाधारा धारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवंती दृष्टस्ते बहुनगर निस्तार विजया। ऐसी थी मेरी माँ जो महारानी बनकर अपने पालित प्रांत पर इस प्रकार की उदार दृष्टि रखती थी। हम वेणुगोपाल स्वामी के धर्मकर्ता हैं, नागेश्वर स्वामी के भी धर्मकर्ता हैं। हमने ही उन सब देवताओं की प्रतिष्ठा की थी। हमारे ही किसी पूर्वज की भक्ति से प्रसन्न होकर उन देवताओं ने यहाँ निवास किया था। आज हम उनसे कह रहे हैं कि यहाँ से चलते बनो, पर वे कहाँ जाएंगे? बेचारे अभी ही कल्याणोत्सवों के बंद हो जाने से धूप दीप नैवेद्य आदि से वंचित होकर निस्तेज हो गए हैं। मेरी माता जीवित होती तो पिताजी आज का सव्यवहार न करते। कहते हैं कि माँ हर एकादशी को स्वामी के दर्शन करती थी और उपवास रखती थी। पिताजी अपनी इच्छा से उसके आराध्य भगवान का ऐसा तिरस्कार करते। नहीं, यह नागेश्वर राव भी अजीब है, उसे मूर्ति पूजा पसंद नहीं, वह केशव जी का ध्यान करता है। केशव जी यानी ब्रह्म समाज के प्रवर्तक केशव चंद्र सेन। कैसा झमेला है, मूर्ति का अर्थ केवल पत्थर से बनी हुई प्रतिमा है। यदि मन ही मन हाथ पांव आदि अवयवों सहित आकृति की कल्पना कर ली जाए तो क्या वह मूर्ति नहीं हुई? कम से कम मूर्तियों में भगवान का भाव तो होता है, उनके मानव मात्र न होने का भान तो होता है। परंतु केशव जी को मनुष्येतर कौन कहेगा? उन्हें दिव्य शक्ति रखने वाला पुरुष कह सकते हैं, पर वे हैं तो मनुष्य ही न। मूर्ति पूजा में दोष क्या है? यह तो उलटी खोपड़ियों का वितंडावाद है। एक ने शुरू किया और सब लोग उछल उछल कर उसका समर्थन करने लगे। धर्मराव जी मूर्ति पूजा के विषय में चर्चा करना चाहते हैं, पर करें किससे? चर्चा के लिए कोई आ खड़ा हो तब न। कुछ कहने जाओ तो कहते हैं कि अन्य धर्मों के प्रति द्वेष उत्पन्न कर रहे हो। हाँ, अलबत्ता हिंदू धर्म की चाहे जो चाहे जितनी निंदा करे उसमें कोई दोष नहीं। अन्य सारे धर्म आकर हिंदू धर्म को उखाड़ने की चेष्टा करें तब भी ठीक है। हमारे वेणुगोपाल स्वामी को आज मुट्ठी भर चावल नहीं मिलता। नागेश्वर स्वामी ही ठीक हैं, उन्हें भीख मांगने की आदत है। कहावत है कि खुद बालिश भर नहीं और गले में ढोलक बांध रखी है। यही दशा वेणुगोपाल स्वामी की है, खुद का कोई ठिकाना नहीं। तिस पर एक देवदासी ले आए हैं, अब दोनों का भोजन कैसे चलेगा? स्वामी के कल्याणोत्सव का क्या होगा? एक बार उत्सव हो जाए तब मैं मर भी जाऊं तो कोई हर्ज नहीं। इतने में भोर होने लगी, कुक्कुटों की बांग सुन पड़ी तो ऐसा लगा कि भगवान के विवाह के समय विचित्र स्वर में आरती गीत गाया जा रहा है। पूर्व दिशा में मुरझाती चांदनी और तीखी होती उषा की किरणें एक दूसरे से मिलकर दुख और आनंद के मेल का स्मरण करा रही थीं। मुर्गे लोगों को जगा रहे थे, पर हड़प्पा की आंख लग गई थी, कोई नहीं जागा। आज मुर्गे की बांग भी 25 वर्ष पुरानी पड़ गई है, उसे कोई नहीं सुनता। शास्त्रीय विषय की भांति वह केवल विश्वास रखने वालों के विश्वास का विषय रह गई है। अब लोग दिन के 10 बजे भी जाग जाएं तो काफ़ी है, तो फिर यह पागल मुर्गा दिन के 10 बजे ही लोगों को क्यों नहीं जगाता? क्यों अब भी अपने पुराने समय पर बांग देता है जबकि उसे कोई नहीं सुनता? कब वह अपनी बांग का समय बदलेगा? रंगाराव छत पर सोए थे, लेकिन उनकी आंख नहीं लग रही थी और न ही वे पूरी तरह जागे थे। एक बार आंखें मूंदती फिर कुछ दिखाई देता और आंखें खुल जाती। उन्होंने आंखें मूंद ली, सरोजनी आकर उनके चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके गले में सांप था, कंगनों के रूप में सांप थे, कानों में कुंडलों के रूप में सांप थे। एक बड़े लंबे सांप को उसने पगड़ी की तरह सिर पर बांध रखा था। रंगाराव ने आंखें खोली, कोई नहीं था। फिर सोचते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। इस बार वेणुगोपाल स्वामी दिख पड़े। उनके माथे पर त्रिचूर्ण का तिलक था, कंठ में हलाल था, गले में सांपों के हार थे। उन हार रूपी सांपों के नीचे चिंतामणि भी था। स्वामी पीताम्बर पहने थे, पीताम्बर के ऊपर एक सांप को दुपट्टे की तरह कस रखा था। वह वेणुगोपाल स्वामी की मूर्ति थी या हरिहरनाथ की, या आधी इनकी और आधी उनकी, ऐसी तो कोई मूर्ति नहीं है। रंगाराव ने फिर आंखें खोली। शिव के जटाभाग से कलकल छल छल बहती मंदाकिनी के हंसते फेन में तथा चंद्रकला से विनिर्गत मधुर ज्योत्सना की बाढ़ में सारा आकाश श्वेत दीख पड़ा। मेघ भी सफेद सांपों की भांति टेढ़े मेढ़े थे। ये शिव के जटाभाग में अलंकरणार्थ पहनाए हुए थे। रंगाराव सोचने लगे, नागेश्वर राव ने मुझे इतना समझाया फिर भी पूर्व वासना मेरे मन को नहीं छोड़ती। 10 वर्ष से मैं नए मार्ग पर चल रहा हूं, फिर भी ये स्वप्न मुझे नहीं छोड़ते। विलायत गया था तब भी ये स्वप्न आए थे, मद्रास में घुड़दौड़ के समय भी आए थे, अब सुवन्नापेठ में कोठी की छत पर सोया हूं तो भी ये वे ही स्वप्न आधम के हैं। इन सपनों से मेरा क्या प्रयोजन है, ये आते ही क्यों हैं। रंगाराव ने आंखें मूंद ली, थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। केशव जी दूर बैठे थे, उनके गले में, सिर हाथों में, कमर में, सर्वत्र सांप ही सांप दिख रहे थे। केशव जी गुणातीत थे, सच्चे ब्रह्मस्वरूप थे, तब उन्हें इन सांपों ने क्यों घेर लिया होगा। उनके पास नागेश्वर राव खड़े थे, सारे सांप नागेश्वर राव को डस रहे थे। दंश के कारण नागेश्वर राव की काया टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। रंगाराव ने आंखें खोली, हवा नहीं चल रही थी। जहां वे सोए थे वहां छत सुपारी के पेड़ों और आम के वृक्षों से भी ऊंची थी। रंगाराव ने उन वृक्षों की ओर देखा, उनके पत्ते हिल रहे थे। तो क्या निचले भाग में हवा चल रही है और यहाँ नहीं है। रंगाराव की आंख लग गई। फिर उनका पुत्र हरप्पा दिखाई दिया, उसके सारे शरीर पर प्रिय बांधवों की भांति सांप रेंग रहे थे। वह सांपों को चूम रहा था, सांप उसके कुर्ते की जेब में घुसकर फिर बाहर आ रहे थे। रंगाराव ने फिर देखा, हरप्पा सपेरा बनकर सांपों के आगे बीन बजा रहा था। फिर रात भर रंगाराव की आंख नहीं लगी।